मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 8 अक्टूबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बारे में चर्चा करूंगा जो खासकर उन्होंने सार्वजनिक स्थलों पर एक तरीके से कब्जा करके और लंबे समय तक जो विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं या धरना देते रहते हैं उसके बारे में क्या कहा है, तो उसी को लेकर के हम लोग कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। एक न्यूज़ जो छोटी सी छपी है और आकाशवाणी की न्यूज़ में वो बात थी भी कि भारत और जापान, इन दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा से संबंधित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए, समझने की दृष्टि से आप यूं कह लीजिए कि संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। उससे पहले की चीज बात होती है जो सहमति पत्र, जिसे हम इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, कि ठीक है हम इस बात पर अब सहमत हो गए हैं, अब इसकी जो फॉर्मेलिटीज होगी वो पूरी की जाएगी, तो उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। देखिए, वैसे तो ये छोटी सी घटना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण मैं इसे नहीं मानता, लेकिन चूंकि साइबर सुरक्षा आपके सिलेबस में अलग से है और सिविल सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने टॉपिक को अपडेट करते चलें, तो एक छोटा सा अपडेट है ये और कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया किस तरह से साइबर संकट से गुजर रही है। साइबर आतंकवाद एक अलग से शब्द चल चुका है, क्योंकि साइबर अटैक करके तो आप किसी भी देश की किसी भी स्थिति कि अब आप कह लीजिए कि डिस्टर्ब कर सकते हैं, चाहे वो हवाई संचालन हो, चाहे मेडिकल साइंस, किसी भी चीज को आप नष्ट कर सकते हैं। हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं। तो जो जापान के साथ सहमति बनी है उसके तहत यही है कि दोनों देश एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे साइबर सुरक्षा की दृष्टि से, जो साइबर सुरक्षा को लेकर के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सुरक्षा की जाएगी। तकनीकी, जो नई नई तकनीकी इस बारे में आ रही हैं उनके बारे में एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा, सुरक्षा से संबंधित जो खतरे हो रहे हैं उनका मुकाबला किया जाएगा, और अगर दुर्भावना से प्रेरित होकर के कोई साइबर गतिविधि होगी तो उसका मुकाबला किया जाएगा। तो इसके बारे में भारत और जापान के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए, बस थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए है। एक न्यूज़ आप लोगों ने अखबार में पढ़ी ही होगी और वो है नोबेल प्राइज को लेकर के। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अब नोबेल प्राइज की घोषणा होनी शुरू हो गई है। अब जो घोषणा की गई है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया है, दोस्तों, दो वैज्ञानिकों को दिया गया है, और ये एक बहुत आप यूं कह लीजिए सुखद संयोग की बात है कि ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं ये महिला वैज्ञानिक हैं और एज में काफी कम है। एक की एज 51 ईयर है और दूसरे की एज 56 ईयर है। इस एज में और खासकर साइंस के सेक्टर में, क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। फ्रांस की जो महिला वैज्ञानिक हैं उनका नाम है इमैनुअल सारपेंटियर, और जो अमेरिका की हैं उनका नाम है जेनिफर डॉडना। मुझे लगता है कि किस विषय में के दिया गया है, विषय तो है ही है, तो केमिस्ट्री के तहत दिया गया है, लेकिन हम ये देखें कि क्या काम इन्होंने किया। चूंकि बहुत ही प्रैक्टिकल काम है तो मुझे लगता है कि ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से, चूंकि मेन्स में साइंस है आपका, तो हो सकता है कि थोड़ा सा काम आ जाए। इन्होंने बेसिकली जो खोज की है उसे आप कह लीजिए, उसे कहा जाए जेनेटिक सीजर, यानी कि एक ऐसी कैंची, सीजर का मतलब है कैंची, एक ऐसी कैंची जिससे जो जीन्स है उसको काटा जा सके या उसमें नया कुछ जोड़ा जा सके। तो आप इसको आप कह लीजिए जीनोम एडिटिंग कैंची है। जीनोम को आप ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी रस्सी सी है, जीनोम की रस्सी है, तो आपको लग रहा है कि यार इस रस्सी में ये तब्दीली करनी है, यहां से ये हिस्सा काट दो और ये हिस्सा काटने के बाद इसमें ये हिस्सा जोड़ दो तो ये अच्छा हो जाएगा, ये जो रस्सी है और खूबसूरत बन जाएगी या ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगी, ज्यादा मजबूत बन जाएगी, तो आप ये सब काम कर लेते हैं। जीन्स क्या है आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो अब कल्पना करके देखिए कि इन्होंने जो खोज की है जीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो कितनी महत्वपूर्ण है कि आप जीन्स को बकायदे काट सकते हैं और उसमें नया कुछ जोड़ भी सकते हैं, यानी कि डीएनए को काटने और जोड़ने वाली तकनीक है। कल्पना करके देखिए, और ये खोज इन्होंने अभी नहीं 2012 में कर ली थी, जिसका नाम है क्रिस्पर कैस 9। ये शब्द याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये बेसिकली जीनोम एडिटिंग की कैंची से संबंधित है। अब आप देखिए कि इससे फायदा क्या होगा। आपको मालूम है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो वंशानुगत होती हैं, यानी कि जीन्स के आधार पर वो बीमारियां अगली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाती हैं। तो अगर हम जीन्स में बदलाव कर सकें तो सीधी सी बात है कि हम उन गंभीर बीमारियों से लोगों को बचा सकते हैं जिनमें खासकर HIV AIDS है, कैंसर है, एनीमिया जैसी बीमारियां हैं, इस तरह की कुछ बीमारियां का और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन सामान्य तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक इसी तरह से आप कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो जीनेटिक मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं, जो आपके सिलेबस में बकायदे है और सिलेबस सर्विस में पूछा भी जाता है, वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो बीज हैं, उनके जीन्स में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम ऐसी फसलें तैयार कर सकते हैं जो रोग का मुकाबला कर सके, कि उसमें कीट नहीं लग रहे हैं, उनकी पैदावार और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। अगर वर्षा कम हो रही है तो तब भी वो फसल हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करके मानवीय और आप कह लीजिए कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये खोज इन दोनों महिला वैज्ञानिकों ने की है, और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वीमेन एम्पावरमेंट भी आपके टॉपिक आप सिलेबस में है, तो इन दोनों को आप बकायदे जब वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो तब भी आप इनकी चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी अभी रिसर्च आई है, बहुत ही छोटी सी रिसर्च है और बहुत ही सामान्य सी है, और आप देख रहे हैं कि कैसे वर्क फ्रॉम होम की तो बात चलिए अलग से है, लेकिन जो शुरुआत हो गई है अब हो गई है स्टडी फ्रॉम होम, उसको लेकर के अब एक स्टडी आई है। कि पहले क्या था कि जब बच्चे स्कूल जाते थे तो जो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने उनके बैठने का जो एवरेज टाइम होता था वो 2 से 2.5 घंटे होता था, यानी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ गए, मोबाइल फोन में कुछ देख रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं, तो 2 से 2.5 घंटे तक वो लोग स्क्रीन को देखते रहते थे। कोरोना के बाद से जब से स्टडी फ्रॉम होम की शुरुआत हुई है तब से उनकी जो बैठने की या स्क्रीन को देखने की जो औसत है वो 12 से 15 घंटे हो गई है। इससे हो क्या रहा है? अब वो लगातार स्क्रीन को देख रहे हैं, तो जब वो क्लास में कोई लेक्चर सुनते थे तो 1 मिनट में उनकी जो पलकें हैं 15 से 17 बार गिरती उठती थी, और अब जब वो स्क्रीन देख रहे हैं तो 15 से 17 बार का ये जो एवरेज है गिर करके 7 से 10 बार हो गया है, 10 से 7 बार अब लगातार वो आंखें फाड़ करके स्क्रीन को देख रहे हैं। तो इससे उन्हें एक बीमारी होने लगी है जिसे डिजिटल विजन सिंड्रोम कहा जाता है, डिजिटल विजन सिंड्रोम, और इसका दूसरा नाम भी है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। डिजिटल की जगह यहां कंप्यूटर कर दिया है। ये जो सिंड्रोम है कुल मिलाकर के इसमें जो स्थिति होती है, अब आप लगातार आंख फाड़ फाड़ करके स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंखों को रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो आंखों की जो नमी होती है वो नमी धीरे धीरे कम होने लगती है, आंखें सूखने लगती हैं, और जब आंखें सूखने लगेंगी तो फिर आंखों में जलन होने लगेगी। तो ये जो इस तरह की जो समस्या है वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये माना जा रहा है कि लगभग 70 से 75% स्टूडेंट्स में, युवाओं में इस तरह की बीमारियों के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, जो बहुत चौंकाने वाली बात है। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी आपके आपके ध्यान में मैं ला रहा हूँ। फ्रेंड्स, आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। आज के अखबारों में मुख्य विषय के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है, जो कि सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, तो डेफिनेटली हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो कई एंगल से है, मैं आपके ध्यान में बस केवल एंगल लाना चाह रहा हूं, मैं यहां संविधान की बात नहीं कर रहा हूं। यानी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आयामों को टच करता है। सीधी सी बात आप जान ही चुके हैं कि सड़कों पर कब्जा करके और फिर उस धरना दे दें आप, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, और वो भी लंबे समय तक फिर आप उसमें धरना दिए हुए हैं, तो सार्वजनिक जो दूसरे लोग हैं उनको असुविधा हो रही है। तो यहां उन्होंने एक बात कही कि जो प्रदर्शनकारी हैं और जो सामान्य लोग भी हैं, ठीक है आपको फंडामेंटल कुछ राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होते हैं, और इन दोनों के बीच में संतुलन बना रहना चाहिए। ठीक है, आपको प्रदर्शन करने का मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं, सार्वजनिक जीवन को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान में विरोध एवं असहमति का अधिकार दिया गया है, लेकिन कर्तव्यों को लेकर के जवाबदेही भी है, उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। फिर उन्होंने एक बात जो नेक्स्ट कही है वो ये है कि अब ये तो लोकतंत्र में तो असहमति होगी ही होगी, और विरोध प्रदर्शन एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा है, इंग्लैंड वगैरह में है, कि जब आपको विरोध प्रदर्शन करना हो तो वहां जाइए और आप विरोध प्रदर्शन कर लीजिए। वैसे भी आप दिल्ली में देखिए जो वोट क्लब है, और जो आप जंतर मंतर नाम सुना होगा आपने कनॉट प्लेस में है, वहां विरोध प्रदर्शन करने वाले जाते हैं, धरना देते हैं और अपना जो भी उनको अपनी बात कहनी होती है वो कहते हैं। तो ये उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब हम आंदोलन करते थे तो अब उसी को हम नहीं कह सकते कि भैया उस समय तो हम ऐसा करते थे तो आप क्यों नहीं रोका जाएगा। बोले कि नहीं, वो तरीके अब अपनाए नहीं जा सकते। अब देखिए कि उसमें एक दो बातें उन्होंने और क्या कही हैं, दूसरे आयामों को, अधिकार और कर्तव्य का आपने देख लिया, विरोध प्रदर्शन रोके नहीं जाएंगे लेकिन किस तरीके से किया जाए ये भी कोण देख लिया, एक जो न्यायालय पर न्यायिक सक्रियता की बात कही जाती है, देखिए उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। मैं न्यायिक सक्रियता को यहां डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग से कि शाहीन बाग इलाके को प्रदर्शनकारियों से खाली कराने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए क्या, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी मतलब प्रशासन हो गया। ऐसे हालात में प्राधिकारियों को खुद कदम उठाना चाहिए, वे अदालत की आड़ नहीं ले सकते, नहीं अपनी प्रशासनिक गतिविधि के लिए अदालत से समर्थन मांग सकते हैं। अदालत किसी कदम की वैधानिकता पर फैसला करती है, यानी कि कोई प्रशासनिक आदेश नहीं देती, आपने जो प्रशासनिक कदम उठाया वो वैधानिक रूप से सही है या नहीं है इस पर फैसला देना हमारा काम है। फिर वो कहते हैं, देखिए कि कितनी कठिन कड़ी टिप्पणी है, कि प्रशासन को बंदूक चलाने के लिए कंधा देना अदालत का काम नहीं है। यानी कि प्रशासन इस बात को ध्यान रखे कि ऐसा नहीं है कि वो अदालत के कंधे पर बंदूक रख करके और फिर चलाए, वो अपना काम खुद करे। और देखिए जब वो अपना काम खुद नहीं करती है तो अब न्यायालय को इसके बारे में निर्णय देना पड़ा, और इसे ही हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। अब एक बात उन्होंने और कही है जो मीडिया के ऊपर है और सोशल मीडिया पर भी इसमें शामिल है, इसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, सोशल मीडिया भी बहुत सही काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो चीजों का ध्रुवीकरण कर देता है। मतलब जो प्रदर्शन होते हैं उसमें तो सोशल मीडिया का रोल होता ही है, चलिए वो एक बात तो अच्छा है, लेकिन वो चीजों को धीरे धीरे बरगला देता है। क्योंकि जब बातचीत करने के लिए लोगों को भेजा गया वहां शाहीन बाग इलाके में जो प्रदर्शन हो रहा था, तो उन्होंने कुछ बयान दिए, वो बयान उस स्थितियों से बिल्कुल अलग थे जो सोशल मीडिया पर जो चैनल्स पर आ रहे थे। तो इस तरह से वो चीजों को बरगलाने का काम करता है, वो ध्रुवीकरण कर देता है, बात कुछ होती है बता कुछ देता है, लोगों के दिमाग में वो बातें कुछ बैठ जाती हैं। यहां कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के लिए भी ये बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि उन्हें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और पब्लिक को भी इसके बारे में जागरूक रहना चाहिए कि जो मीडिया में आ रहा है वही सब कुछ सही नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे कल के फैसले को लेकर के जिन्हें मैंने आपके सामने रखा है। मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं, नवदीप सिंह जगराव पंजाब से, अनुराग मिश्र उत्तर प्रदेश से और यशराज बैस इंदौर मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।